आकाश ने अरमान को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, कहीं राजवीर ने मरने से पहले तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया अरमान? जैसे ही आकाश ने सीधे शब्दों में ये बात कही, अरमान गुस्से से खड़ा हो गया और सीधा उसने आकाश का गिरेबान पकड़ लिया और उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोला, अपने होश में रहो आकाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की और राजवीर का नाम लेने की? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे बातें कर रहे हो? अरमान की आवाज़ अब पूरी तरह से खतरनाक हो चुकी थी और वो गुर्राते हुए आगे बोला, अरमान सिंघानिया ने केवल कुछ वक्त के लिए हथियार छोड़े हैं, लेकिन मारना नहीं छोड़ा, समझे तुम? अब तो वहां का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। ध्रुव और आहान तुरंत आगे बढ़े और अरमान को शांत करने की कोशिश करने लगे। दोनों उसे बार बार आकाश को छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन अरमान की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी सुमित आगे बढ़ा और अरमान को देखकर बोला, आखिर आकाश ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया अरमान जो तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? इस तरह से आकाश से बात करने का क्या मतलब है? हम यहाँ तुमसे बात करने के लिए आए हैं और तुम हमारे किसी भी सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं हो? सुमित की आवाज़ सुनकर अरमान ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे आकाश को छोड़ दिया। आकाश अपना गला सहलाने लगा था। आहान तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, भाई आप ठीक तो है ना? वहीं आकाश की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, क्योंकि भले ही आज तक कितने ही बड़े मसले क्यों ना हुए हों, कितनी बड़ी तबाही क्यों ना आई हो, कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन आज तक अरमान ने कभी भी आकाश के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला था। आकाश का दिल अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुख गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल किया और वहीं खड़ा रहा। तभी सुमित एक बार फिर अरमान को देखकर बोला, हमें समझ में नहीं आ रहा अरमान, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? भले ही तुम आज तक सामान्य अंदाज में बात करते रहे हो, लेकिन अभी तुम किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहे। वो कुछ पल रुका और फिर बोला, एक बात बताओ, डेविल ग्रुप में अलर्ट मैसेज आया था तो तुम वहाँ क्यों नहीं थे? ऐसा भी क्या हो गया था अरमान? फिर उसने गहरी नज़रों से अरमान को देखते हुए कहा, और हमें दादाजी ने बताया कि तुम थोड़ी देर पहले ही मिनी हॉस्पिटल से गए थे। उधर आस्था के दादाजी पर जानलेवा हमले की बात भी सामने आई है, ये बात उन्होंने खुद कही थी। सुमित की आवाज़ अब गंभीर हो चुकी थी। अरमान, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आस्था के दादाजी पर इस तरह का हमला कैसे हो सकता है? तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। थोड़ी देर पहले तुम हॉस्पिटल में मौजूद थे, फिर वहां से गए क्यों? और तुम्हारे जाने के बाद उन पर हमला हुआ या फिर तुम्हारे रहते हुआ? जैसे जैसे सुमित बोल रहा था, उसका शक और गहराता जा रहा था। अब तो अरमान की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने सुमित को घूरते हुए कहा, अपने होश में रहो सुमित, मुझे इस वक्त तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना है। वो गुस्से से चिल्लाया, अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहना चाहता, अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। वहां का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। वैसे भी उन चारों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। वे लगातार यही सोचते रहे थे कि आखिर अरमान के दिमाग में चल क्या रहा है। अगली सुबह जब चारों एक साथ उठे और बाहर आए तो खुद को रोक नहीं पाए और सीधा अरमान के कमरे में पहुंच गए, लेकिन अरमान का व्यवहार देखकर वे पूरी तरह टूट गए थे। तभी ध्रुव ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी भैया को अकेला छोड़ देना चाहिए, उनसे बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो बाहर जाने लगा, लेकिन तभी सुमित अपनी जगह पर खड़ा रहा और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ में पहली बार जिद साफ सुनाई दे रही थी। और वैसे भी अगर अरमान को ऐसा लगता है कि इस तरह हम पर गुस्सा करके और इस तरह की बातें करके वो हमारे सवालों से बच सकता है तो वो गलत है, सुमित ने दृढ़ स्वर में कहा। उसे हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। इतने सालों में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेविल ग्रुप पर इमरजेंसी मैसेज गया हो और सभी लोग एक जगह जमा हुए हों, लेकिन पहली बार अरमान वहां मौजूद ना हो। मुझे ये बात कुछ अजीब लग रही है, या फिर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। वहीं अरमान का दिमाग अब और भी ज्यादा गर्म होने लगा था। वो गुस्से से उन लोगों को बार बार देखते हुए बोला, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अरमान व्यंग्य से हंसा और बोला, मैंने ही तुम लोगों को इतना ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है कि आज तुम लोग मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। अरमान का घमंडी और रूखा रवैया देखकर आहान खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से बोला, माफ कीजिएगा भैया, लेकिन आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कल तक तो आप हम सबसे प्यार से बात कर रहे थे, प्यार से मिल रहे थे, फिर अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह बिहेव करने लगे हैं? आहान की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आप हमें सारी बात बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। प्लीज भैया, अगर कोई परेशानी है तो हमें बता दीजिए। अरमान ने एक गहरी और ठंडी नजर आहान पर डाली, फिर वो अचानक तेजी से हंसा और बोला,
वैसे मानना पड़ेगा, मेरा छोटा सा भाई काफी बड़ा हो गया है। अब मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल करने लगा है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फिलहाल मैं तुम लोगों से पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम में से किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता। फिर उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे एक जरूरी काम है। ये बोलकर अरमान उन चारों को झटका देकर सीधा अपने कमरे से बाहर निकल गया था। वहीं आस्था जल्दी से नीचे आई और सबसे पहले नानी माँ से मुलाकात की। अंश को देखकर वो बोली, नानी माँ, दादाजी कैसे हैं? नानी माँ ने प्यार से अंश को देखते हुए कहा, बेटा अभी तो वो सो रहे हैं, अभी उनकी दवाई का असर कम नहीं हुआ है। सुना है रात में एक बार जागे थे, आलोक भाई साहब ने मुझे बताया था, लेकिन अभी भी वो सो रहे हैं। ये सुनकर आस्था हैरान हो गई और जल्दी से मिनी हॉस्पिटल में अपने दादाजी को देखने के लिए चली गई। वहां पर इस वक्त अविनाश और आलोक सिंघानिया जी मौजूद थे। आस्था को जैसे ही उन्होंने देखा, आलोक जी ने आस्था के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब को रात में शायद कोई बुरा ख्वाब आ गया था जिसमें उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उन पर हमला कर दिया हो, लेकिन सब संभाल लिया गया था और अभी वो गहरी नींद में है। ये सुनकर आस्था चिंतित होकर बोली, लेकिन दादाजी को ऐसा क्यों लगा? तब अविनाश बोला, आस्था तुम तो जानती हो ना कि दादाजी अभी तक सारी बातों को पूरी तरह भुला नहीं पाए हैं। कभी कभी हमारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ था वो सब उन्हें याद आ जाता है और फिर वो परेशान होने लगते हैं। उसने प्यार से आस्था को समझाते हुए कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है, थोड़ी देर में दादाजी को पूरी तरह होश आ जाएगा, हम सब उनका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी वो अपने देश में बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है ना, दादाजी बरसों बाद अपने देश वापस लौटे हैं, देखना हम उनके लिए यहाँ का सफर पूरी तरह यादगार बना देंगे। ये सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर उसी समय रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक भी अपने अपने कमरों से निकलकर सीधा हॉल में आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह उनके दिल और दिमाग में एक अजीब सी हैरानी भरी हुई थी। उनके पार्टनर उनके पास मौजूद नहीं थे और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। चारों एक साथ हॉल में जमा हो गई। रौनक रश्मि और राधिका को देखकर बोली,
अरे रश्मि दी, राधिका दी, आप दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? क्योंकि रश्मि नई नई माँ बनी थी और उसका बेबी रात में उसे काफी परेशान करता था, इसलिए वो अक्सर देर तक सोती थी, और राधिका प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे हमेशा नींद आती रहती थी। फिलहाल रौनक की बात सुनकर रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, मैं देर तक इसलिए सोती रहती थी क्योंकि आकाश मेरे साथ होता था तो वक्त का पता ही नहीं चलता था, लेकिन पता नहीं आज वो इतनी सुबह कहाँ चला गया। रश्मि की बात सुनकर रौनक के कुछ बोलने से पहले ही वंशिका बोल पड़ी, क्या आकाश भैया भी अपने कमरे में नहीं है? ध्रुव भी नहीं है? तभी राधिका भी हैरानी से बोली, हाँ, और सुमित भी कमरे में नहीं था। अब रौनक ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ, हमें तो लगा था कि हमारा लल्लूलाल ही कमरे में नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरी गैंग ही गायब है। रौनक ने ये बात अपने फनी अंदाज में कही। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियाँ मुस्कुरा दीं। फिर रश्मि बोली, इसका मतलब है कि वो सब साथ में ही हैं, हम लोग बेकार में परेशान हो रहे थे, लेकिन इतनी सुबह सुबह उन्हें क्या काम हो सकता है, वो सोचते हुए बोली, और वो इस तरह कहाँ जा सकते हैं, उन लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या कर जाएं। तभी वंशिका बोली, छोड़ो ना, हम लोग भी कितने दिनों बाद फ्री हुए हैं, इतने दिन से इतना सब कुछ चल रहा था कि सही से बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। फिर रश्मि बोली, फिलहाल तो बच्चे सो रहे हैं, क्यों ना हम सब हॉल में बैठकर थोड़ी देर बातें करें। ये सुनकर सभी मान गई। रौनक ने अपनी गोद में लिए हुए पगुनगुन को हॉल में पड़े झूले पर लिटा दिया था, उसी तरह रश्मि ने भी अपने बेटे को हॉल में आराम से लिटा दिया। वंशिका भी मुस्कुराकर एक तरफ बैठ गई। तभी राधिका बोली, मैं सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन तभी रौनक ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे आस्था भी दिखाई नहीं दे रही, क्या वो भी जाग गई है? तभी उसकी नज़र नानी माँ की गोद में अंश पर गई। नानी माँ उसे प्यार से संभाल रही थी। रौनक तुरंत बोली, लगता है आस्था मिनी हॉस्पिटल में है, मैं जाकर उससे मिलती हूँ और दादाजी को देख लूँगी। रौनक की बात सुनकर राधिका और वंशिका बोली, ठीक है, हम भी साथ में चलते हैं। फिर वंशिका रश्मि को देखकर बोली, रश्मि दीदी, आप यहीं रुकिए, बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। रश्मि ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तब रौनक ने कहा, नानी माँ, हम बस अभी आते हैं, आस्था को भी साथ लेकर आते हैं और ये भी देखकर आते हैं कि दादाजी की तबीयत कैसी है। ये बोलकर रौनक, राधिका और वंशिका वहां से उठी और सीधा मिनी हॉस्पिटल की ओर चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस वक्त आस्था अविनाश के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी और उसकी नजरें मायूसी से भरी हुई थी।